हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 354। अनय की ऐसी बातें सुनकर मनस्वी की आंखों में आंसू आ गए। वो उस वक्त जोर जोर से रोते हुए उससे कई सवाल करना चाहती थी, लेकिन अभी जो बात चल रही थी उसे क्लियर करना ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अनय प्लीज ट्रस्ट मी, मैं विराज को नहीं बल्कि आदित्य को बचाना चाहती हूँ। विराज अपनी सनक में पागल हो गया है। मैं सुनैना को बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसे पढ़ाई के बहाने से आउट ऑफ इंडिया भेज देना चाहती हूँ। इस बारे में मैं उसके पेरेंट्स से भी बात कर लूँगी। लेकिन तुम हमारे रिश्ते के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या सब कुछ इतना आसान है तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता तोड़ना? और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो, अनय ने फिर से उसी कड़वाहट से कहा, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी साबित नहीं होता है, हमें करके दिखाना होता है। उस वक्त तो तुम्हें कभी मेरा नाम याद नहीं आता, कभी मुझसे किसी मैटर के बारे में बात नहीं करती। यहाँ तक मैं खुद तुम्हारे बारे में पता करते हुए यहाँ तक आया हूँ, और उसके बाद भी तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए जो सच है उसे एक्सेप्ट कर लो, यही अच्छा होगा। और आदित्य चलो यहाँ से, मेरे साथ कोई ज़रूरत नहीं है इसके साथ कोई डील करने की। इतना बोलते हुए अनय ने आदित्य का हाथ पकड़ा और मायूसी से अपना सिर हिलाते हुए एक नज़र मनस्वी की तरफ देखा, फिर आदित्य को लेकर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पीछे मनस्वी की आंखों में भरे आंसू अब उसके गालों पर लुढ़कने लगे। आदित्य और उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी वहां से बाहर चला गया। उन सब के जाते ही मनस्वी जमीन पर घुटने के बल बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि आज पहली बार उसे अपने अंदर कुछ टूटने जैसा दर्द हो रहा था। मनस्वी के साथ वहां उसे संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसे शायद किसी की जरूरत भी नहीं होती थी पहले। जब भी वो इस तरह टूटकर बिखरती थी उसने खुद ही उठना और संभलना सीखा था। लेकिन कुछ दिनों बाद वो किसी न किसी तरह से अनय पर निर्भर होने लगी थी। उसे पता नहीं क्यों इमोशनल सपोर्ट के लिए उसे हमेशा अनय चाहिए होता था। वो उसे जिस तरह से कंफर्ट करता था कभी कोई और नहीं कर पाया। लेकिन आज ये तीखे शब्द भी उसने ही बोले थे, और वो कहते हैं ना, जो आपके सबसे ज्यादा करीब हो वही आपको इतनी तकलीफ भी दे सकता है। ये बात आज मनस्वी पर एकदम सच साबित हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती कहाँ है। ये सब समझने की कोशिश करते हुए वो जमीन पर घुटने के बल बैठी हुई अपने चेहरे पर हाथ रखकर लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसके आसपास खड़े बॉडीगार्ड हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी मनस्वी का ध्यान उनकी तरफ गया। उसने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, बाहर जाओ तुम सभी अभी के अभी, उनमें से एक बॉडीगार्ड ने बीच में बोला। लेकिन मैडम आप, मनस्वी ने अपने आंसू पोंछते हुए एकदम सख्ती से कहा, मैं ठीक हूँ और अगर ठीक नहीं भी हूँ तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मैं जैसा कह रही हूँ तुम लोग वैसा करो, अभी जाओ यहाँ से, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं कॉल कर लूँगी। मनस्वी की बात सुनकर वे सारे गार्ड चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ अनय काफ़ी डिसअपॉइंटेड और गुस्से में था। उसने आदित्य का हाथ अभी भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसे लगभग अपने साथ खींचते हुए वो कमरे से बाहर कॉरिडोर में आ गया था। बिना कुछ बोले वो चुपचाप आगे चलता जा रहा था। आदित्य भी थोड़ा गिल्ट फील कर रहा था, इसलिए उसने अब तक कुछ नहीं बोला था। उसे लगा था अनय उससे नाराज नहीं होगा, लेकिन अभी कुछ और ही लग रहा था, इसलिए आदित्य उसके साथ और आगे नहीं बढ़ा और अपनी जगह पर रुकते हुए बोला, कहाँ लेके जा रहा है यार मुझे, तो कुछ बताएगा? अनय ने ताना मारते हुए कहा, हाँ जैसे तुम तो मुझे बड़ा सब कुछ बताते हो कुछ भी करने से पहले। अपने और अनय के बीच की टेंशन को कम करने के लिए आदित्य ने हल्केपन से बोला, ये सास की तरह ताने मारना कहाँ से सीखे, तू कौन सा सीरियल देख रहा है? अनय ने बात को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा, किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, अब जैसा करोगे वैसा ही सुनने को मिलेगा, और अभी तक कोई भी बात क्लियर नहीं किया तुमने, और यहाँ पर क्यों रुकना चाहते हो बताओ मुझे? आदित्य गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांधता हुआ बोला, क्योंकि मुझे वो विराज सहगल वापस चाहिए जिसे तुम्हारी वाइफ ने कहीं छुपा कर रखा है। अनय बहुत डिसअपॉइंटमेंट से बोला, नाम मत लो मनस्वी का मेरे सामने, उस पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तुमसे भी 10 गुना ज्यादा, पता नहीं क्यों लेकिन बस आ रहा है। आदित्य ने ऊपर से नीचे तक एक नज़र उस पर डालते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखने लगे थे शायद तुम उससे, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जल्दी ही उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया, नहीं तो जितने ज्यादा दिन बिताते उसके साथ बाद में तकलीफ भी उतनी ही ज्यादा होती है। अनय ने उसे पूरी बात बताई, क्या असली चेहरा यार, और प्लीज ऐसा मत बोलो उसके बारे में। हाँ मैं उससे थोड़ा नाराज हूँ और डिसअपॉइंटेड भी, लेकिन वो पहले से बदल गई है, मैंने उसे गुस्से में वो सब कुछ बोल दिया, शायद कुछ ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं सुन सकता उसके बारे में, तुम्हें नहीं पता वो कितने एफर्ट कर रही है सिर्फ मेरी गुड बुक्स में आने के लिए। आदित्य ने कन्फ्यूजन में पूछा, अच्छा तो तुम उसे एक मौका देने के लिए रेडी हो गए हो क्या? एक मिनट, तुम भूल गए हो कि उसने अब तक तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है, एकदम नौकरों की तरह या फिर शायद उससे भी बुरा? एक गहरी सांस लेते हुए अनय बोला, हाँ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो सब मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे वो सब कुछ झेलना पड़ा। लेकिन अब अगर वो बदलने का एक मौका चाहती है, तो मुझे लगता है एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। अनय ने मनस्वी को लेकर एक और सवाल किया। अच्छा, अगर तुम ऐसा सोचते हो, तो वहां अंदर मीटिंग रूम में तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की? और जो कुछ अभी हो रहा है, उसे लेकर क्या कहना चाहोगे? ये तो पास्ट में नहीं है ना, ये सब कुछ तो अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी तुम नजरें फेर लोगे। अनय ने समझदारी से जवाब दिया। नहीं आदि, मुझे पता है कि इस वक्त वो गलत है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पर। लेकिन पूरे सही तुम भी नहीं हो, क्योंकि तुमने अब तक मुझे पूरी बात नहीं बताई। और विराज को टॉर्चर, क्या सच में तुम ऐसी बचकानी हरकत करना चाहोगे? और भी, आदित्य ने सफाई देते हुए कहा, उसकी इन हरकतों के लिए मुझे उसे एक अच्छा सबक सिखाना है बस, बाकी कुछ नहीं करना चाहता था मैं उसके साथ। क्या तुम भी अपनी बीवी की बातों में आ गए हो? और तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा? आदित्य का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए अनय बोला, नहीं आदित्य, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और पता है तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन देखो, जो तुम कर रहे थे वो भी पूरी तरह से सही नहीं है, और इस तरह से मुझे नहीं लगता वो विराज सुधरेगा। आदित्य ने गुस्से में दांत पीसते हुए सवाल किया, अच्छा तो फिर क्या करूं मैं? उसकी आरती उतारूं या फिर उसे शाबाशी दूं जाकर, जो कुछ भी उसने करने की हिम्मत दिखाई उसके लिए? अनय ने उसकी तरफ देखकर अपने दांत दिखाते हुए कहा, फिलहाल तो तुम इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तुमने कहा ना, मनस्वी ने विराज और उसकी माँ को कहीं छुपा कर रखा है। लेकिन कैसे? पूरी बात तो बताओ मुझे, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ बार बार एक ही सवाल पूछ पूछ कर, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी मुंह नहीं खोल रहा था। लेकिन अब तो क्या, तुम अकेले हो आदित्य, अब तो बताओ। आदित्य थोड़ा परेशान होते हुए बोला, देखो पहले मुझे उन लोगों तक पहुंचना है, इसलिए चलो मेरी मदद करो। मैंने कहा ना, तुम्हारी बीवी ने विराज और उसकी माँ को कहीं छुपा कर रखा है, मुझे वे दोनों वापस चाहिए अपने कब्जे में, इसलिए क्या तुम बता सकते हो इस बारे में?
उसकी बातें सुनकर अपने सिर पर हाथ मारते हुए अनय ने सवाल किया, मैंने तुम्हें इतना समझाया लेकिन सब वेस्ट। और क्यों वापस चाहते हो तुम विराज को? लहने दो उसे, सजा मिल चुकी है उसकी, कभी और भी आगे मिलेगी जरूर। भगवान पर भरोसा रखो और छोड़ दो। क्या इस वक्त सच में वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? आदित्य सब कुछ याद करता हुआ थोड़े गुस्से में बोला, नहीं, वो जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें पता है, तुमने देखा था ना सुबह सुनैना कैसा बर्ताव कर रही थी, और ये सब कुछ उसके दिमाग पर चोट की वजह से हुआ। तुम्हें पता है, पहले वो बिल्कुल ठीक थी, उसके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज। आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे शांत कराते हुए अनय बोला, डोंट वरी यार, डॉक्टर ने कहा है ना, भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आदित्य ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ लेकिन फिर भी मैं इस खेल में मनस्वी और विराज को जीतने नहीं दूंगा, मुझे उन लोगों को कैसे भी करके ढूंढना ही है, और मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। आदित्य की बात पर अनय कुछ बोल पाता उससे पहले ही आदित्य का मोबाइल फोन रिंग हुआ। फोन रिंग होने की वजह से उन दोनों का ध्यान उस बात से हट गया। आदित्य ने अपनी पॉकेट से मोबाइल फोन निकालकर कॉल रिसीव किया, क्योंकि वो नैना का फोन कॉल था। आदित्य ने कॉल रिसीव की और हाँ हाँ में बोलता हुआ वो कॉल पर बात करने लगा। आदित्य ने कॉल पर पूछा, क्या सच में तुम बिल्कुल सच बोल रही हो ना? उसने मेरे बारे में पूछा, इसका मतलब मैं उसे याद हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं भूली और ना ही कभी भूल सकती है। अनय के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोला, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम आदित्य, भाभी तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, और तुम दोनों दो। आदित्य ने अनय की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले अभी हम जो कुछ भी डिस्कस कर रहे थे वो अब हमें करना होगा, चलो मेरे साथ चलो। आदित्य की इतना बोलने पर भी अनय वहां से उसके साथ नहीं गई, वो कुछ सोचते हुए इधर उधर देख रही थी, जैसे कि कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। आदित्य वहां से आगे जा ही रहा था कि अनय ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, अभी भी सोच ले यार, तेरे लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बदला या फिर अभी भाभी से मिलना? अनय के इस सवाल पर आदित्य कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया। क्रमशः